नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादु याजो से समाचार सुनेंगे। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश के संपूर्ण विकास के लिए जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसराइल ने कहा है, उसने ईरान के खिलाफ अपनी जवाबी सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर ईरान कोई और कार्रवाई करता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित इलाकों में और बारिश होने की चेतावनी दी। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। मनिका बत्रा वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियन इवेंट के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जनजातीय लोग प्राकृतिक जीवन शैली से संचित ज्ञान का भंडार है। वे आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जनजातीय लोगों की जीवन शैली से सीख लेकर देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब विकास की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी परंपराओं और संस्कृति से समृद्ध है। आदिवासी समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते आए हैं। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने 7 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंदेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन में जारी युद्ध तथा इसके मानवीय पहलुओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में कल 7वीं भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलफ सोल्स ने कहा कि यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार व्यापक शांति की आवश्यकता है। दोनों नेताओं ने खासकर विकासशील देशों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन युद्ध के नकारात्मक प्रभाव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित आतंकी संगठनों के खिलाफ संगठित प्रयास किए जाने की भी अपील की। संयुक्त वक्तव्य में पश्चिम एशिया में शांति तथा स्थिरता पर बल दिया गया और पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फलिस्तीनी हत्याराबंद गुट हमास के हमले की इस एक अवसर में निंदा की गई। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान में कई स्थानों पर तेज विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार 1 अप्रैल को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई। इसराइल सेना ने कहा कि अब उसकी जवाबी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। ओडिशा के तटवर्ती जिलों में भीषण चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य और सेवाओं को बहाल करने का कार्य जोर शोर से जारी है। संवाददाता के अनुसार चक्रवात के कारण कई इलाकों में बिजली की लाइनें टूट गई थी। बड़ी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए थे। मकानों तथा धान के खेतों में हजारों हेक्टर फसलों को नुकसान पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अब कमजोर होकर ओडिशा के उत्तरी भागों में कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसके और कमजोर होने तथा अगले 12 घंटे के भीतर पूरी तरह समाप्त हो जाने की संभावना है। राज्य के कई भागों में वर्षा अभी भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पुडुचेरी, कराईकल और माहे में आज हल्के से मध्यम बारिश तथा बिजली गिरने की भी संभावना अनुमान व्यक्त किया गया है। झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 1609 पर्चे भरे गए हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल संपन्न हो गया। इस चरण में 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व सांसद रविन्द्र कुमार राय को पार्टी के झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उधर कांग्रेस ने 23 और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने 15 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 29 अक्टूबर नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विश्व बैंक से डिजिटल समावेशन और टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के परिवर्तनकारी अनुभवों से लाभ उठाते हुए नवाचारों के दोतरफा आदान प्रदान को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान भविष्य के लिए तैयार विश्व बैंक समूह विषय पर विकास समिति के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच 18 से 22 नवम्बर तक नई दिल्ली में होने वाली महानिदेशक स्तर की सीमावर्ता स्थगित हो गई है। बीजीबी के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान स्थिति के कारण उनके अधिकारी देश भर से तैनात हैं। इसी वजह से उन्होंने बीएसएफ से इस बैठक को एक महीने बाद आयोजित किए जाने का अनुरोध किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर 4.5 साल के सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के सैनिकों के डेपसांग तथा डेमचौक क्षेत्रों में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेना के सूत्रों के अनुसार इस महीने के अंत तक सीमा पर गश्त फिर से शुरू हो जाएगी। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में इतिहास रच दिया है। वे डब्ल्यूटीटी चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। मनिका ने कल फ्रांस के मोंटप्लेयर में प्री क्वार्टर फाइनल्स में रोमानिया की बर्नाडेट ज़ोकोस को 3-1 से हराया। वे आज चीन के क्यान तियानयी का सामना करेगी। पुणे में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 359 रन का लक्ष्य दिया है। मैच के तीसरे दिन आज न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 255 रन बनाकर आउट हुए। पहली पारी में न्यूजीलैंड ने 259 रन बनाए थे, जबकि भारतीय टीम पहली पारी में 156 बनाकर आउट हुई थी। अंतिम समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 178 रन बना लिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। इसरो के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ आज दोपहर नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल मेमोरियल व्याख्यान 2024 देंगे। वे इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर विषय पर अपने विचार रखेंगे। इस व्याख्यान का आयोजन प्रसार भारती से सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व कनक राजू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पद्मश्री से सम्मानित कनक राजू ने नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और युवाओं को सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बेंगलुरु में श्री भारती तीर्थ स्वामी जी के संन्यास सुवर्ण महोत्सव के दौरान नमः शिवाय पाठ कार्यक्रम में भारत के सांस्कृतिक दर्शन वासुदेव कुटुंबकम पर प्रकाश डाला, जो मानवता को एक परिवार के रूप में देखता है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म समावेशिता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान पढ़े गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में आदि शंकराचार्य के महत्व को रेखांकित किया गया, जिसमें ज्ञान के लिए समर्पित उनके असाधारण जीवन और सामाजिक पीड़ा को कम करने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।